राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव जय जय गोपी जन वनाप जय गिरिवर जय गोपी जन वनाप जय गिरिवर जय ब्रज जनरंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी जय हो जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीर डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवराम दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाख गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज द सेवन डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज द सेवन डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज द सेवन डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग।
आपको
ये प्रभु जी की श्री भगवान ने कहा पुस्तक जो है अभी तक जो पहले भी 6 छप चुकी है, अभी ये 7वीं पुस्तक कल ही हुई है लंच, तो आप लोग भी ले सकते हैं। ये सिर्फ 70 रुपए का है। इसमें 4th अध्याय के दूसरे नंबर की ये पुस्तक है। 4th अध्याय पर जो 2 पुस्तकें छपी है उसमें से ये एक है। और इसमें विभिन्न प्रकार के जो यज्ञ हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल है समझना, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। और प्रसिद्ध भी इतनी बुक है, सभी भक्त इसके बारे में जानते हैं। और ये प्रभु जी ने अभी बताया था कि आप रामचंद्र जी का संग करना चाहते हैं तो ये कथा सुनिए, श्री राम कथा। तो ये एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई। राम जी का ये चित्र भी है हमारे सामने, और परसों के जो प्रभुपाद कैलेंडर में यही वाले चित्र थे, और साथ में भगवान कह रहे हैं, सॉरी श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि श्री राम की संगति, श्री राम कथा सुनने से ही श्री राम की संगति हमको प्राप्त होती है। हरे कृष्ण, ये बात एकदम इन्होंने सही बोली, इसलिए मुझे याद आया।
हरे कृष्ण। कल हमने ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में वाल्मीकि रामायण से कथा सुनी थी, तो व्यासपाद प्रभु ने इंटरनेट में देखा था। आप लोगों से कितने लोगों ने इंटरनेट में देखा था कल जो मेरा प्रवचन हुआ था? अच्छा, आवाज़ ठीक से नहीं सुन पाए तो बहुत कम लोगों ने देखा इंटरनेट में। तो हमने जहाँ तक सुना था तो उसके आगे कुछ सुनेंगे। कथा उस समय की है जिस समय सीता का अपहरण हो गया और हनुमान जी लंका गए, सीता का पता लगा लिया और सीता से मिल लिया और लंका में आग लगा दी और वापस आ गए श्री राम के पास। और अब श्री राम जो है बाणरों की सेना लेकर के समुद्र के इस पार आ गए हैं। अभी समुद्र को पार नहीं किया, समुद्र को पार करके लंका नहीं पहुँचे हैं, समुद्र के इस पार ठहरे हुए हैं है? और उसी समय विभीषण आए, रावण को जो है समझाया लेकिन रावण नहीं माना, तो विभीषण ने रावण का त्याग कर दिया और राम के शरण में आए। तो अब वो समय जो है ये घटना उस समय की है कि विभीषण ने श्री राम की शरण ली। तो कल जो हमने सुना था तो उसमें काफ़ी विस्तार से श्री राम ने अपने बानर मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया था कि विभीषण के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, और अंत में फिर ये निर्णय लिया कि विभीषण को शरण देना चाहिए, विभीषण को आश्रय देना चाहिए, है ना। तो यहाँ तक जो है चर्चा हुई थी कल। अब आगे की जो चर्चा है आप लोग सुनिए बड़े ध्यान से। तो श्री राम के अभय देने पर विनयशील विभीषण ने नीचे उतरने के लिए पृथ्वी की ओर देखा। विभीषण आकाश में खड़े हैं, है ना, मतलब कोई आधार नहीं है, आकाश में खड़े हैं। उनके 4 मंत्री भी आकाश में खड़े हैं, हैं? आकाश में क्यों खड़े हैं? पृथ्वी में क्यों नहीं आ रहे हैं नीचे? अपनी सुरक्षा के लिए, हैं? लेकिन जब राम ने अभय दिया कि नीचे आ जाओ, कोई खतरा नहीं है, तो विभीषण ने जो है नीचे की ओर देखा, पृथ्वी की ओर उतरने के लिए नीचे की ओर देखा, नीचे की ओर उतरने के लिए पृथ्वी की ओर देखा। कैसे उतरते हैं, है ना, मनुष्य में शक्ति नहीं है, राक्षस में ऐसी शक्ति है, है ना। ऊपर की ओर देखते हैं तो ऊपर चले जाते हैं, और नीचे की ओर देखते हैं तो नीचे आ जाते हैं, है ना। तो श्री राम ने अभय दिया है तो विभीषण ने नीचे उतरने के लिए पृथ्वी की ओर देखा, है ना। आश्चर्य ना। राघवेणा भय दत्ते सन्नतो रावणानुजहां विभीषणो महाप्राज्ञो भूमिं सममेलोकयन्। वे अपने सेवकों के साथ हर्ष से भरकर आकाश से पृथ्वी पर उतर आए, हर्ष से भरकर के आ गए। क्या हर्ष? किस बात का हर्ष है? कि श्री राम ने मुझे अभय दे दिया। नहीं तो बड़ी चिंता की बात थी, रावण को त्याग दिया, अगर यहाँ राम भी स्वीकार ना करें तो क्या हालत हो जाएगी? धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, है ना। यहाँ राम की शरण मिल गई तो बहुत हर्ष हुआ, है ना। तो हर्ष से भरकर अपने सेवकों के साथ, विभीषण के साथ चार सेवक हैं, वे भी राक्षस हैं, है? चार उनके ही समर्पित, उनके साथ बिल्कुल पूर्ण समर्पित हैं, है? तो वो भी जो है उनके साथ आकाश से पृथ्वी पर उतर आए, आकाश से पृथ्वी पर उतर आए। उतरकर चारों राक्षसों के साथ विभीषण श्री राम के चरणों में गिर पड़े, अभय दे दिया, राम के चरणों में गिर पड़े। खाद पाता बनिम हृष्टो भक्त रणुचर सह सतुराम से धर्मात्मा निपात विभीषण पादयोर निपाता थे चतुर्भि सह राक्षस। उस समय विभीषण ने श्री राम से हर्षवर्धक बात कही, हर्ष को बढ़ाने वाली बात कही। किसने कही बात? विभीषण ने। किससे कही? राम से कही। अब्रवीच्य तदा वाक्यम रामं प्रति विभीषणः धर्मयुक्तं च युक्तं च साम्प्रतं संप्रहर्षणम्। भगवन, मैं रावण का छोटा भाई हूँ, रावण ने मेरा अपमान किया है। रावण ने मेरा क्या किया है? अपमान किया है। क्यों अपमान किया है? क्योंकि मैंने उसके काम का विरोध किया था, कि तुमने राम की पत्नी सीता का अपहरण किया है, मैंने निंदा की थी उसकी, तो उसने मेरा अपमान किया है। आप समस्त प्राणियों को शरण देने वाले हैं, इसलिए मैंने आपकी शरण ली है। अनुजो रावणस्याहं तेन चास्न मानितः भवन्तं सर्वभूतानां शरण्यं शरणं गतः। देखिए ये कथा अगर देखा जाए गहराई से तो हम सब लोगों की यही कहानी है, है ना। अभी हम लोग जो बैठे हैं तो विभीषण के भाव में ही हमें सोचना चाहिए, विभीषण के भाव में हम लोग भी आए हैं, रावण के पक्ष से यहाँ आए हैं, कि वो बाकी जो भौतिकतावादी संसार है ये क्या है? रावण का ही कार्य है, है? रावण जो है राम की पत्नी सीता को चुरा करके भोगना चाहता है, है ना। तो भौतिकतावादियों का जो सिद्धांत है आजकल यही है, है? कि प्रकृति को भोगो, जो कि भगवान की शक्ति है, और भगवान से अलग हो करके, भगवान से शत्रुता करके कोई भगवान नहीं है, है ना। तो रावण की भावना है, है ना। तो रावण सीता को भोगना चाहता है, और आजकल की जो भौतिकतावादी सभ्यता है वो क्या है? भौतिक प्रकृति को भोगना चाहती है, है ना। और हम लोग आए हैं उनके पक्ष को छोड़ करके इस पक्ष में आए हैं शरण लेने, है ना। तो कथा जो निकली है वो मैंने नहीं सोचा था, लेकिन ये लागू हो रही हम लोगों के ऊपर, हम लोगों की बोला गो। हरि बोल। तो क्या बोला उसने? कि आप सबको शरण देने वाले हैं, इसलिए मैंने आपकी शरण ली है। हाँ, तो भगवान जो है सबको शरण देने के लिए तैयार है, लेकिन रावण शरण नहीं लेगा। हाँ, तो राम का क्या दोष है, है ना। ऐसे लोग राम की शरण ना ले, लेकिन भगवान तो शरण देने के लिए तैयार हैं, लेकिन शरण नहीं लेना चाहते हैं, है ना। तो विभीषण ने कहा कि आप सबको शरण देने वाले हैं, इसलिए मैंने आपकी शरण ली है। अनुजो रावणस्याहं तेन चास्मि विमानितः भवन्तं सर्वभूतानां शरण्यं शरणं गतः। अपने सभी मित्र धन और लंकापुरी को मैं छोड़ आया हूँ, अब मेरा राज्य जीवन और सुख सब आप ही हैं। मेरा राज्य जीवन सुख सब कहाँ है? आपके चरणों में ही है, सब कुछ है, मैं सब छोड़ के आया हूँ। परित्यक्ता मया लंका मित्राणि च धनानि च भवद्गतम हि मे राज्यम जीवितम च सुखानि च। विभीषण के ये वचन सुनकर श्री राम ने मधुर वाणी द्वारा उन्हें सांत्वना दी, और नेत्रों से मानो उन्हें पी जाएंगे। राम जो है कैसे देखते हैं विभीषण को, नेत्रों से मानो पी जाएंगे है। इस प्रकार प्रेम पूर्वक उनकी ओर देखते हुए कहा, तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामो वचनम् अब्रवीत् वचसा सान्त्वयत्वेनम् लोचनाभ्याम् पिबन्नव। विभीषण तुम मुझे ठीक ठीक राक्षसों का बल और उनकी कमजोरी बताओ। तुम ठीक ठीक बताओ मुझे, क्योंकि अब मेरे शत्रु हैं वे, तुम्हारे भी शत्रु हैं, तुम मेरे पक्ष में हो हैं, तो शत्रु की शक्ति और उसकी कमजोरी सब मालूम होना चाहिए है ना। तो श्री राम कह रहे हैं ठीक ठीक बताओ मुझे हैं, राक्षसों की शक्ति बताओ और उनकी कमजोरियां भी बताओ। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम के ऐसा कहने पर राक्षस विभीषण ने रावण के संपूर्ण बल का परिचय देना आरंभ किया। विभीषण पूरा राम के पक्ष में है ना, कि पूरा पूरा रावण का विनाश कैसे हो वो सब कुछ बता रहे हैं, बताना चाहते हैं है ना। एक निर्णय कर लिया, अब वो नहीं है कि नहीं नहीं अब हमारा तो अभी उससे भी पक्ष, उसके इससे भी संबंध है, अब तो वो भी मेरा है, ये भी मेरा है, इधर भी उधर भी नहीं। अब विभीषण का ये हिसाब नहीं है, एक ही हिसाब है, रावण का विनाश होना चाहिए और श्री राम की विजय होना चाहिए। इस भावना में वे रावण का जो है सब रहस्य बता रहे हैं, गुप्त रहस्य बता रहे हैं रावण के। क्या आख्याय मम तत्वेन राक्षसानां बलाबलम् एव मुक्तम तदा रक्षो रामेण क्लिष्ट कर्मणा रावणस्य बलम सर्वम आख्यातुम उपचक्रमे। श्री राम ब्रह्मा जी के वरदान से रावण गंधर्व नाग और पक्षी सभी के लिए अवध है, किसी के द्वारा नहीं मारा जा सकता है। क्यों? उसको वर मिला है, वरदान मिला है, हैं? मनुष्य को छोड़कर, इसलिए भगवान ने मनुष्य रूप में अवतार लिया ना उसको मारने के लिए है ना। अवध्या सर्वभूतानां गंधवर्ग पक्षिणां राजपुत्र दशग्रीवो वरदानात् स्वयं भुवः। रावण से छोटा और मुझसे बड़ा जो मेरा भाई कुंभकर्ण है वो वहाँ पराक्रमी है, युद्ध में वो इंद्र के समान बलवान है। कौन? कुंभकर्ण। रावणानंतरो भ्राता मम ज्येष्ठस्य वीर्यवान कुंभकर्णो महातेजा शक्र प्रतिबलो युधी। श्री राम रावण के सेनापति का नाम प्रहस्त है। क्या नाम?
प्रहस्त।
आपने उसका नाम सुना होगा, उसने कैलाश पर घटित हुए युद्ध में कुबेर के सेनापति मणिभद्र को भी पराजित कर दिया था। राम सेनापति तस्य प्रहस्तो यदि ते श्रुतः कैलासे येन समरे मणिभद्रः पराजितः। और रावण का पुत्र इंद्रजित वो अवध कवच धारण करके हाथ में धनुष लेकर युद्ध में खड़ा होता है, उस समय अदृश्य हो जाता है, दिखाई नहीं देगा, बहुत खतरा है, वो दिखाई नहीं देगा तो कहाँ प्रहार करेंगे, और वो सबको मारेगा। कौन? इंद्रजीत रावण का पुत्र है। बद्धगोल बद्धगोधांगुली त्राणस तवध्य कवचो युधि धनुराधाय यस्तिष्ठन दृश्यो भवति इंद्रजीत। श्री राम इंद्रजीत ने अग्निदेव को तृप्त करके ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली है कि वो विशाल व्यूह से युक्त संग्राम में अदृश्य होकर शत्रुओं पर प्रहार करता है। संग्रामे सुमहन व्यूहे तन प्रियत्वा हुतासनम अंतर्धान गता श्रीमान इंद्रजीत हंति राघव। फिर तीन राक्षस रावण के सेनापति हैं, कौन कौन है? महोदर, महापार्श्व और अगम्बन। क्या? महोदर, महापार्श्व और अकंपन, ये तीन राक्षस रावण के सेनापति हैं। युद्ध में लोकपालों के समान पराक्रम प्रकट करते हैं। महोदर महापार्श्व राक्षसचापि कंपन अनेक पास तु तस्यते लोकपाल समायुधि। लंका में खून और मांस का भोजन करने वाले और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले 10 करोड़ हजार राक्षस निवास करते हैं। दस करोड़ हजार कितना हुआ, दस करोड़ हजार है, तो दस करोड़ और दस का और गुणा कर दो तो सौ करोड़ हो गया, और फिर सौ तो एक अरब और सौ, सौ अरब है, एक खरब हुआ, एक खरब राक्षस है निवास करते हैं। उन्हें साथ लेकर रावण ने लोकपालों से युद्ध किया था, उस समय देवताओं सहित वे लोकपाल भी रावण से पराजित होकर के भाग गए। दस कोटि सहस्राणी रक्षसाम काम रूपिणाम मांधसोणित भक्ष्याणाम लंकापुर निवासिनाम सतैस्तु सहितो राजा लोकपालान योधयन् सदैवस्तु ते भग्ना रावणेन दुरात्मनाम। विभीषण की ये बात सुनकर श्री राम ने मन ही मन उन सब पर बारंबार विचार किया और इस प्रकार कहा, विभीषण से तु वचन तच्छ्रुत्वा रघुसत्तमः अन्वेक्ष मनसा सर्वम इदं वचनम अब्रवीम। विभीषण, तुमने रावण के जिन जिन पराक्रमों का वर्णन किया है उन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ। श्री राम क्या बोले, उन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मतलब क्या है कि मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, तो मतलब क्या है कि मेरे द्वारा मारा जाएगा, उसकी शक्ति इतनी नहीं है कि मतलब मुझे कुछ चिंता हो उसके लिए। तो श्री राम बोले, मैं अच्छी प्रकार जानता हूँ, यानि कर्मा पदानानी रावणस्य विभीषण आख्यातानि च तत्त्वेन ह्यवगच्छामि तान्यहम्। परंतु सुनो, मैं सच कहता हूँ कि प्रहस्त और पुत्रों के सहित रावण का वध करके मैं तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। अहम् हत्वा दशग्रीवं सप्रहस्तं सात्मजं राजानं त्वां करिष्यामि सत्यमेतं शृणोति शृणोतु मे। रावण रसातल में या पाताल में प्रवेश कर जाए अथवा ब्रह्मा जी के पास चला जाए, कहा रसातल में चला जाए या पाताल में चला जाए या ब्रह्मा जी, सबसे नीचे है पाताल और सबसे ऊपर है ब्रह्मा जी, हैं कहीं भी चला जाए तो भी अब वह मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकेगा, मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकेगा। ससातलम वा प्रभसेन पातालम वा रावण पितामह सकाशम वा न मे जीवन विमोक्षते। मैं अपने तीनों भाइयों की सौगंध खाकर कहता हूँ, कौन तीन भाई, मैं अपने तीनों भाइयों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि यदि मैं पुत्र सेवक और बंधु बांधवों से रावण का वध किए बिना अयोध्यापुरी में प्रवेश नहीं करूँगा। हत्वा रावणं संखे सपुत्र जन बांधवम अयोध्याम न प्रवेक्ष्यामि त्रिविस्तैर भ्रातृभिशपे। अनायासी महान कर्म करने वाले श्री राम के ये वचन सुनकर विभीषण ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया, मस्तक झुकाकर प्रणाम किया है ना, और फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया, श्रुत्वा तु वचनम तस्य रामस्या क्लिष्ट कर्मणः शिरसा वन्द्य धर्मात्मा वक्तुमेवं प्रचक्रमे। प्रभो, राक्षसों के संहार में और लंकापुरी पर आक्रमण करके उसे जीतने में मैं आपकी यथाशक्ति सहायता करूंगा। कौन कह रहा है, आपकी क्या करूंगा, यथाशक्ति सहायता करूंगा, मतलब आप कुछ सोचना नहीं मुझे कि आप सोचा, अरे नहीं ये तो मेरे साथ रहे, ये मेरे वो हैं भाई हैं, ये बंधु हैं, ये कुछ नहीं है ना, यथाशक्ति सहायता करूंगा और प्राणों की बाजी लगाकर युद्ध के लिए रावण की सेना में भी प्रवेश करूंगा। इतना ही नहीं है, अब प्राणों की बाजी लगा कर भी राक्षसानां वधे सायं लंकायाश्च प्रदर्शने करिष्यामि यथा प्राणं प्रेक्ष्यामि च वाहिनी। विभीषण के ऐसा कहने पर श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रसन्न होकर लक्ष्मण से कहा, दूसरों को मान देने वाले लक्ष्मण, तुम समुद्र से जल लाओ, उसके द्वारा मैं राक्षसा विभीषण का लंका के राज्य पर शीघ्र ही अभिषेक करूंगा, मेरे प्रसन्न होने पर इन्हें ये लाभ तो मिलना ही चाहिए। इतिपुर्वाणम रामस्तु परिस्वज्य विभीषणम अब्रवील लक्ष्मणम प्रीतः समुद्रांजलि मानयेम तेन चैव महाप्राज्ञम अभिषिञ्च विभीषणम राजानं रक्षसाम क्षिप्रम प्रसन्ने मयि मानदे। उनके ऐसा कहने पर लक्ष्मण ने मुख्य मुख्य वानरों के बीच श्री राम के आदेश से विभीषण का राजा के पद पर अभिषेक कर दिया। एवं मुक्तस्तु स्वामित्री रम्यसिंचन विभीषणम मध्ये वानर मुख्या नाम राजानम राजशासनम। श्री राम का ये तुरंत ही अनुग्रह देख करके वानरों ने देखा कि तुरंत ही कृपा मिली श्री राम की तुरंत कृपा मिली राम की हैं हैं तात्कालिक प्रसाद, इसको बोलते तात्कालिक प्रसाद, तुरंत प्रसाद मिला। तो सब वानर हर्ष ध्वनि करते हुए श्री राम को साधुवाद देने लगे। साधु साधु ऐसे बोलते हैं, साधु साधु है ना, हाँ अंग्रेजी बोलते हैं वेल डन वेल डन। साधु साधु सब वानर बोलने लगे है ना। हम लोग बोलते हैं हरी बोल। समय के अनुसार शब्द बदलते हैं है ना, है ना। तम प्रसादम तो रामस्य दृष्ट्वा सद्यः प्लवंगमा प्रचुकुश्रु प्रचुकुश्रुर महात्मानम साधु साधु ते चाब्रवन। तत्पश्चात हनुमान और सुग्रीव ने विभीषण से पूछा, राक्षसराज हम लोग इस समुद्र को बानरों की सेनाओं के साथ किस प्रकार पार कर सकेंगे? अभी तक कोई उपाय नहीं, अब सेना पूरी तैयार है लेकिन 100 योजन 1200 किलोमीटर का समुद्र है, कैसे पार होगी है ना। उसके लिए जो है अभी तक कुछ उपाय नहीं है लेकिन सब कुछ तैयार है ना। तो हनुमान सुग्रीव और विभीषण नहीं हनुमान और सुग्रीव ने विभीषण से पूछा हनुमान और सुग्रीव ने विभीषण से पूछा क्या पूछा कि हम सब लोग महाबली वानरों की सेनाओं के साथ किस प्रकार पार कर सकेंगे? क्या समुद्र अब्रवीत च हनुमान च सुग्रीवश्च विभीषणम कथम सागर मक्षोभ्यम तरामे वरुणालयम सैन्य परिवृता सर्वे वानराणाम महोजसाम। वैसे तो सुग्रीव के लिए कोई समस्या नहीं है पार करने में, हनुमान जी के लिए कोई समस्या नहीं है पार करने में है ना, लेकिन राम चूँकि मनुष्य लीला कर रहे हैं, राम लक्ष्मण कैसे पार करेंगे, पूरी भारत सेना कैसे पार करेंगी, तो वो तो समस्या है ना। तो सुग्रीव हनुमान जो है विभीषण से पूछ रहे हैं जिस उपाय से हम सब लोग सेना सहित समुद्र के पार जा सकें वो उपाय बताओ। उपाय रि गच्छा मैं यथा नद नदीपतिम तरा मैं तरसा सर्वे सैन्या वरुणालयम। उनके इस प्रकार पूछने पर विभीषण ने उत्तर दिया, रघुवंशी राजा श्री राम को समुद्र की शरण लेनी चाहिए। विभीषण ने क्या उत्तर दिया कि श्री राम को समुद्र की शरण लेनी चाहिए। एवं मुक्तस्तु धर्मात्मा प्रत्युवाच विभीषणम समुद्रम राघवो राजा शरणम गंतुम अर्हति। इस सागर को राजा सागर ने खुदवाया था इसलिए सागर नाम है, राजा सागर ने खुदवाया था, श्री राम सागर के ही वंशज हैं इसलिए समुद्र को इनका काम अवश्य करना चाहिए। अपने ही वंश के हैं समुद्र भी है, राजा सागर के 60,000 पुत्र थे तो वे भी सागर कहलाते थे है ना। तो समुद्र तो पहले था नहीं, इतना समुद्र नहीं था। अभी भारत का जो नक्शा देखते हैं आप तो लंका जो दिखाई दे रही है तो लंका और भारत के बीच में समुद्र नहीं था, जम्बूद्वीप बहुत बड़ा था, उन्होंने खोद डाला जम्बूद्वीप को और कितने द्वीप निकल आए, सिंगापुर है ना, जापान है ना, कितने मतलब द्वीप निकल आए, लंका, ये सब जो है क्या था, एक जमीन थे, बीच में समुद्र नहीं था, उन्होंने कितना खोदा कितना बड़ा कर दिया समुद्र। यहाँ हिंद महासागर कितना बड़ा हो गया, बम्बई का समुद्र कितना बड़ा है, वो था ही नहीं पहले। और इधर कलकत्ता का समुद्र कितना बड़ा है, ये सब था ही नहीं पहले। ये जापान वगैरह इनके बीच में समुद्र नहीं था है ना, समुद्र के बीच में कुछ भी नहीं था, सब जमीन थी इन बीच में समुद्र इतना खोदा है, कितना खोदा। तो राजा सागर के 7,000 पुत्रों ने ही समुद्र को इतना बड़ा किया है, हैं? तो विष्णु क्या कह रहे हैं कि श्री राम समुद्र की शरण लें। तो समुद्र जो है अगर सहायता करेगा तो वानरों की सेना पार कर जाएगी। कैसे? समुद्र अगर चाहे तो आप उसके ऊपर पैर से चल करके मतलब पार कर सकते हैं। अगर समुद्र चाहे, अगर समुद्र कहते मुझे पार कर जाओ आप, हैं? जैसे जमीन में आप चलते हैं, इस समुद्र को चल करके पार कर सकते हैं, हैं? लेकिन अगर समुद्र नहीं चाहता है तो आप डूब जाएंगे। समुद्र ही डुबाता है ना, जिसको चाहे, हैं? समुद्र है, अगर डुबाएगा नहीं समुद्र है, तो वो जो है जमीन की तरह चल करके पार कर सकता है। तो विभीषण क्या कह रहे हैं कि अगर राम समुद्र की शरण लें और समुद्र प्रसन्न हो जाए तो पूरी वानरों की सेना ऐसे ही चलेगी समुद्र के ऊपर जैसे जमीन में चलते हैं। तो विभीषण ने कहा कि हाँ ऐसा करिए। विद्वान राक्षस विभीषण के ऐसा कहने पर सुग्रीव उस स्थान पर आए जहाँ श्री राम थे। विभीषण बहुत विद्वान है, विभीषण बहुत विद्वान है, मतलब इतना इतिहास पता है रघुवंश का, कि राम के कितनी पीढ़ियों पहले राजा सागर थे और समुद्र जो इतना बड़ा हुआ है ना। तो सुग्रीव कहाँ पर आए? राम के पास आए। क्यों? बताने के लिए कि विभीषण ऐसा कह रहे हैं। सुग्रीव ने समुद्र पर धरना देने के विषय में विभीषण का जो वचन था उसने बताया। श्री राम स्वभाव से धर्मशील थे, अतः उन्हें भी विभीषण की बात अच्छी लगी। राम के पास तो इतनी शक्ति है कि सुखा भी तर सकते हैं समुद्र को, लेकिन वे भी जो है कठोर कार्य नहीं करना चाहते हैं। अगर प्रसन्नतापूर्वक कोई काम हो जाए तो राम जो है रोषपूर्वक कोई कार्य नहीं करना चाहते, विनाश का कार्य नहीं करना चाहते। अब समुद्र को सुखाएंगे तो बहुत बड़ा विनाश कार्य होगा ना, तो राम भी जो है ना धर्मात्मा है, इसलिए उनको अच्छा लगा कि ठीक शरण लें। राम के पास इतनी शक्ति है, शरण लेने की क्या जरूरत है? लेकिन शरण लेने से अगर काम हो जाए तो अपनी शक्ति दिखाने की जरूरत नहीं। तो श्री राम सुग्रीव का सत्कार करते हुए उनसे मुस्कुराकर बोले, लक्ष्मण विभीषण की सम्मति मुझे भी अच्छी लगती है, परंतु सुग्रीव राजनीति के बड़े पंडित हैं और तुम भी समयोचित सलाह देने में कुशल हो, इसलिए तुम दोनों प्रस्तुत कार्य पर अच्छी तरह विचार करके जो ठीक हो वो बताओ। तुम दोनों कौन? दोनों लक्ष्मण और सुग्रीव मिल करके विचार करो, फिर मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम दोनों विचार करो। श्री राम जैसे कहने पर दोनों वीर सुग्रीव और लक्ष्मण उनसे आदर पूर्वक बोले, श्री राम इस समय विभीषण ने जो सुखदायक बात कही है वो हम दोनों को क्यों नहीं अच्छी लगेगी? ठीक है, सुग्रीव ने कहा ठीक है, हम दोनों इसको पसंद कर रहे हैं। इस भयंकर समुद्र में पुल बांधे बिना इंद्र सहित देवता असुर भी लंकापुरी में नहीं प्रवेश कर सकते, इसलिए आप विभीषण के वचन के अनुसार ही कार्य करें, अब अधिक विलंब करना ठीक नहीं है। समुद्र से अनुरोध किया जाए कि वह हमारी सहायता करे जिससे हम सेना के साथ लंकापुरी में पहुंच सकें। उन दोनों के ऐसा कहने पर श्री राम उस समय समुद्र तट पर कुछ बिछाकर उसके ऊपर उसी तरह बैठे जैसे वेदी पर अग्निदेव प्रतिष्ठित होते हैं। इसी बीच में राक्षसराज रावण के गुप्तचर पराक्रमी राक्षस शार्दूल ने वहां आकर सागर तट पर छावनी डाले पड़ी हुई सुग्रीव द्वारा सुरक्षित वानर सेना को देखा। कौन आया? रावण का गुप्तचर। कौन? क्या नाम है? शार्दूल। उसने देखा, वानर की सेना को देखा, सब और शांत भाव से स्थिति हुई। उस विशाल सेना को देखकर वो राक्षस लौट गया और जल्दी से लंकापुरी में जाकर राजा रावण सिंह बोला। राक्षसों को समुद्र पार करने में कुछ भी परिश्रम नहीं लगता, समुद्र के पार और इधर बड़ी जल्दी इधर आ गया, उधर भी चला गया और रावण को बताया उसने। क्या बताया? महाराज लंका की ओर बानरों और भालुओं का एक प्रवाह सा बढ़ा चला आ रहा है, दूसरे समुद्र के समान सेना है। एक समुद्र ये है और दूसरा समुद्र मानवों का है। ये दोनों रघुवंशी बंधु भी इस समय समुद्र तट पर ठहरे हैं। बानरों की वो सेना सब ओर से 10 योजन तक को घेर कर ठहरी है। 10 योजन का स्थान मतलब 120 किलोमीटर तक। बानरों की सेना कितनी दूर तक है? 120 किलोमीटर यहाँ से वृंदावन तक। यहाँ से वृंदावन हुआ ना 120, यहाँ से वृंदावन तक है बानरों की सेना। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। आप शीघ्र ही इस विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करें। आपके दूत शीघ्र सारी बातों का पता लगाने के योग्य हैं, अतः उन्हें भेजिए और जैसा उचित हो वैसा करिए। चाहे उन्हें सीता को लौटा दीजिए, चाहे सुग्रीव से मीठी मीठी बातें करके अपने पक्ष में मिला लीजिए। सुग्रीव से मीठी मीठी बातें करके अपने पक्ष में मिला लो, या तो सीता को लौटा दो। आप सीता को नहीं लौटाना चाहते हो तो सुग्रीव को अपने पक्ष में मिला लो। राम से फोड़ लो, सुग्रीव को अपने पक्ष में मिला लो। अथवा सुग्रीव और राम में फूटी डलवा दो। अगर सुग्रीव पक्ष में ना आए तो कम से कम उनमें झगड़ा करा दो। किसमें? राम में, सुग्रीव में। सुग्रीव की पूरी सेना है, राम को छोड़ के चले जाएगी। ये भी कर सकते हो। शार्दूल की बात सुनकर रावण सहसा व्यग्र हो उठा और राशुक नामक राक्षस से ये वचन बोला। दूत, तुम मेरे कहने से शीघ्र ही बानरा सुग्रीव के पास जाओ। मधुर और उत्तम वाणी द्वारा निर्भीकता पूर्वक उनसे मेरा संदेश कहो। बानरराज, आप बानरों के महाराज के कुल में उत्पन्न हुए हैं। आदरणीय ऋक्ष राजा के पुत्र हैं और स्वयं ही बड़े बलवान हैं। मैं आपको अपने भाई के समान समझता हूँ। यदि मुझसे आपका कोई लाभ नहीं हुआ तो मेरे द्वारा आपकी कोई हानि भी तो नहीं हुई है, तो फिर राम से क्यों मिल गए? रावण सुग्रीव को संदेश दे रहा है कि फिर राम से क्यों मिल गए? अगर मैंने आपका कोई फायदा नहीं किया तो आपका नुकसान भी तो नहीं किया है, फिर आप मेरे शत्रु से आप क्यों मिल गए? सुग्रीव, यदि मैं बुद्धिमान राम की स्त्री को हर लाया तो इसमें आपका क्या नुकसान हुआ? अतः आप किष्किंधा को लौट जाओ। सब पूरी बानरों की सेना लेकर के आप चले जाओ। हमारी श्रीलंका में बानर लोग किसी तरह नहीं पहुंच सकते। यहाँ देवताओं और गंधर्वों का भी प्रवेश होना संभव है, तो मनुष्यों और बानरों की तो बात ही क्या है। रावण के इस प्रकार संदेश देने पर उस समय राक्षस शुक तोता नामक पक्षी का रूप धारण करके तुरंत आकाश में उड़ा और समुद्र के ऊपर ऊपर बहुत दूर का रास्ता तय करके सुग्रीव के पास जा पहुंचा। आकाश में ठहर गया और रावण की आज्ञा के अनुसार सारी बातें सुग्रीव से कही। आकाश में ठहर करके जिस समय वो संदेश सुना रहा था उस समय बानर उछल कर तुरंत उसके पास जा पहुंचे और वे चाहते थे हम शीघ्र इसकी पांखें नोच लें, इसे घूसों से ही मार डालें। इस निश्चय के साथ सारे बानरों ने उस निशाचर को बलपूर्वक पकड़ लिया, उसे कैद करके तुरंत आकाश से भूतल पर उतारा। इस प्रकार बानरों की पीड़ा देने पर शुक पुकार उठा, श्री राम, राजा लोग दूतों का पद नहीं करते हैं, अतः आप बानरों को रोकिए। जो स्वामी के अभिप्राय को छोड़कर अपना मत प्रकट करता है वो दूत बिना कही हुई बात कहने का अपराधी है, अतः वही पद के योग्य होता है। अगर मैंने अपने स्वामी की बात पूरी पूरी नहीं बोली हो तब तो आप मेरा वध करो। मैंने तो अपने स्वामी की बात को पूरा पूरा बोला है, तो अब मेरा वध क्यों किया जा रहा है? अब सही बात बोली गलत बात बोली वो मेरे स्वामी ने जो बोली मैं दूत वही दोहरा रहा हूँ, तो मैंने दूत का कार्य किया तो आपको तो वध नहीं करना चाहिए मेरा। कौन बोला? शुभ बोला। किससे बोला? श्री राम से बोला। शुभ के वचन और विलाप को सुनकर श्री राम उससे राम ने उसे पीटने वाले बानरों को पुकार कर कहा इसे मत मारो। श्री राम का मत मारो मत मारो। उस समय सुख के पंखों का भार कुछ हल्का हो गया था क्योंकि तो बानरों ने नोच डाला था। फिर उनके अभय देने पर सुख आकाश में खड़ा हो गया, फिर बोला महान बल पराक्रम से युक्त सुग्रीव, रावण को मुझे आपकी ओर से क्या उत्तर देना चाहिए, अब मुझे बता दो। सुग्रीव से बोला वो कि आप अपना उत्तर बता दो, मैं रावण को बता दूं जा करके। सुग्रीव इस प्रकार पूछने पर उस समय सुग्रीव ने उस राक्षस के दूत से स्पष्ट और निश्चल बात कही। हाँ, तुम रावण से क्या कहना, वध के योग्य रावण, वध के योग्य रावण, तुम ना तो मेरे मित्र हो और ना दया के पात्र हो, ना मेरे उपकारी हो और ना मेरे प्रिय व्यक्ति हो, श्री राम के शत्रु हो, इस कारण अपने संगे संबंधियों से तुम बाली की भांति मेरे लिए बद्ध हो, मतलब तुम मेरे द्वारा मारे जाओगे। मैं पुत्र बंधु और कुटुंबी जनों सहित तुम्हारा संहार करूंगा और बड़ी भारी सेना के साथ आकर पूरी लंका पुरी को भस्म कर डालूंगा। मूर्ख, यदि इंद्र आदि समस्त देवता तुम्हारी रक्षा करें तो भी श्री राम के हाथ से अब तुम जीवित नहीं छूट सकोगे। तुम अंतर्धान हो जाओ या आकाश में चले जाओ या पाताल में घुस जाओ या महादेव जी के चरण कमलों का आश्रय लो या अपने भाइयों सहित अवश्य फिर भी अपने भाइयों सहित अवश्य तुम श्री राम के हाथों से मारे जाओगे। तीनों लोकों में मुझे कोई भी पिशाच राक्षस गंधर्व ऐसा नहीं दिखाई देता जो तुम्हारी रक्षा कर सके। चिरकाल के बूढ़े गृद्धराज जटायु को तुमने क्यों मारा? किसको मारा? जटायु को, हाँ, वो बूढ़े थे जटायु, तुमने क्यों मारा? यदि तुम में बड़ा बल था तो श्री राम या लक्ष्मण के पास से सीता का अपहरण क्यों नहीं किया? अगर शक्ति थी तुम्हारे पास तो उनके सामने क्यों नहीं अपहरण किया? तुम सीता जी को ले जाकर अपने सिर पर विपत्ति को क्यों नहीं समझ रहे हो? श्री राम महाबली हैं, देवताओं के लिए दुर्जय हैं, किंतु तुम उन्हें अभी तक समझ नहीं सके, वे तुम्हारे प्राणों का अपहरण करेंगे। तब अंगद ने कहा, महाराज मुझे तो ये दूत नहीं कोई गुप्तचर लगता है। अंगद ने क्या कहा? अंगद ने कहा, महाराज किससे? सुग्रीव से कहा, मुझे दूत नहीं लगता है, गुप्तचर लगता है। इसने यहाँ खड़े खड़े आपकी सारी सेना का माप तोल कर लिया है, पूरा पूरा अंदाजा लगा लिया है, अतः इसे पकड़ लिया जाए, लंका को ना जाने पाए, मुझे यही ठीक जान पड़ता है। दूत नहीं, गुप्तचर को मार डालना चाहिए और दूत को नहीं मारना चाहिए। अंगद ने कहा कि दूत नहीं लगता है, गुप्तचर लगता है, तो इसको मार डालना चाहिए। फिर तो राजा सुग्रीव के आदेश से बाणों ने उछलकर उसे पकड़ लिया और बांध लिया। वो बेचारा अनाथ की भांति विलाप करता रहा। उन बाणों से पीड़ित हो शुक ने श्री राम को बड़े जोर से पुकारा और कहा, प्रभो बलपूर्वक मेरी आँखें नोची और आँखें फूटी जा रही हैं, यदि आज मैंने प्राणों का त्याग किया तो जब मेरा जन्म हुआ और जब मैं मरूंगा, जन्म और मरण के इस काल में मैंने जो भी पाप किया है वो सब आपको ही लगेगा। तो राम को बद बोला है तो दूध की अगर हत्या हो रही है आपके सामने तो आप ही जिम्मेदार हैं, सब पाप आप ही लोगे। उस समय उसका वो विलाप सुनकर श्री राम ने उसका बद नहीं होने दिया। उन्होंने बाणों से कहा, छोड़ दो, ये दूत होकर ही आया था, ये दूत बनकर के ही आया है, अब इतना बोल रहा है तो इसका मतलब है कि दूत ही है, ये एक गुप्तचर नहीं है, है ना? तो गुप्तचर का मतलब ये है कि वो आएगा, छिप करके आएगा, अपना परिचय सही सही परिचय नहीं बताएगा, कुछ का कुछ परिचय बताएगा, है ना, और बातें बना बना करके जो है रहस्य जानने की कोशिश करेगा और फिर वहाँ बताएगा। गुप्तचर, तो गुप्तचर को मार डालना चाहिए। ये दूत क्या होता है? वो सीधी सीधी बात बताता है कि मैं उनका दूत हूँ, उन्होंने ये कहा और वही बात दोहराएगा, तो दूत को नहीं मारना चाहिए, चाहे जितनी भी गलत बात बोले, क्योंकि वो अपनी बात नहीं बोल रहा है, वो केवल दोहरा रहा है, है ना? तो इस तरह से कथा और आगे बढ़ती है। तो अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, अब आप लोगों की ओर से कोई चर्चा है या कोई प्रश्न है? हाँ जी,
वो जो प्रश्न आया था कि भगवान रामचंद्र को तो सब पता है कि मान लो रावण की सेना वाले उनका कहाँ तक है कितना,
भगवान जो है सबको सेवा करने का अवसर देते हैं। भगवान की असीमित शक्तियाँ हैं और असीमित ज्ञान हैं, वे सब कुछ जानते हैं और सब कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन फिर भी वे सबको जो है मौका देते हैं कि अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हर कोई जो है सेवा करे, है ना? तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों के आश्रित होते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइ बे मोर नाम, कि पूरी पृथ्वी में जितने नगर गांव हैं सर्वत्र मेरे नाम का प्रचार होगा। तो चैतन्य महाप्रभु तो अपनी शक्ति से ही ये सब कार्य कर सकते हैं, है ना। लेकिन वे अवसर देते हैं अपने भक्तों को, हमें भी आपको भी, कि हम लोग भी कार्य करें। तो ये कार्य जो है मतलब भगवान का है और भगवान की इच्छा से होता है और होगा, है। लेकिन वे अवसर देते हैं कि आप करो, है ना। हाँ जी, अच्छा चलो। हाँ
प्रश्न की क्या मतलब वो भविष्य की परीक्षा भी लेता हूँ, उस समय परीक्षा भी थी कि क्या ये वास्तव में मेरे शरण में आया है।
परीक्षा तो तब कह सकते हैं कि अगर वो जानते नहीं हैं। अगर आपने एक तरफ तो ये कहा कि वे सबको जानते हैं, अगर वे सबको जानते हैं तो विभीषण के हृदय को भी जानते हैं कि पूर्ण अंदर से और बाहर से वो पूर्ण समर्पित है, तो परीक्षा की आवश्यकता ही नहीं। परीक्षा की तो आवश्यकता भी होती है जब मैं जानता नहीं हूँ तो मैं आपकी परीक्षा लूँगा, है ना। लेकिन परीक्षा की फिर कोई बात ही नहीं आती। अगर आप मानते हैं कि वे सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, तो परीक्षा की कोई बात नहीं आती, है ना। लेकिन हाँ कह सकते हैं मनुष्य की लीला में कि मतलब वो परीक्षा ले रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसे परीक्षा भी नहीं ली जा सकती। ऐसे परीक्षा अगर मान लो वो नहीं जानते हैं, श्री राम नहीं जानते हैं और वो पूछ रहे हैं, है ना, और वो कुछ का कुछ भी बता दे, हाँ, तो आप जानते नहीं हैं तो आपको तो या तो विश्वास करना पड़ेगा कि जो कह रहे ठीक कह रहे हैं, और नहीं विश्वास करते तो नहीं विश्वास करोगे। आपको अगर पता ही नहीं, अगर मैं आपके बारे में जानते नहीं आपका कितना बैंक बैलेंस है और मैं आपसे पूछूं, है ना, तो यहाँ परीक्षा की बात थोड़ी है कि मैं परीक्षा ले रहा हूँ आपकी, कि आप जितना बताओगे या तो मैं ना मानूं, झूठ बोल रहे हो, अगर मैं मानूं तो मानूं, तो यहाँ भी परीक्षा की बात नहीं थी। परीक्षा तब होती है जब मैं जानता हूँ कि आपका बैंक बैलेंस इतना है, फिर मैं पूछूँ कितना है बैंक बैलेंस, तो आप बताओगे गलत तो मैं समझ जाऊँगा कि ये है। अच्छा हाँ जी बोलिए।
विभीषण ने भगवान श्री राम का शरण लिए थे, तो महान महात्मा थे विभीषण ने, परम पूज्य थे, भगवान का शरण लिए थे, तो राक्षसों असुरों से तो भगवान का शरण नहीं लेते हैं। लेकिन लौकिक जगत में विभीषण को क्यों निंदा करता है, क्योंकि बोलता है घर शत्रु विभीषण, कुछ भी निंदा के लिए बोलता है घर शत्रु विभीषण। विभीषण तो महान महात्मा थे।
हाँ एक मुहावरा है ना, क्या बोलते हैं, घर का भेद या लंका ढाबे, हाँ इस तरह से एक मुहावरा है। लेकिन ये जो मुहावरा है ये असुरों की ओर से ही बना है, असुरों की ओर से ही बना है, है ना। तो क्योंकि जहाँ तक शास्त्र के अनुसार रावण के जो कर्म हैं ये अपने कर्मों से ही उसका विनाश हुआ, उसे अपना जो विनाश किया है वो अपने कर्मों के कारण ही किया, है ना। लेकिन ये इस तरह की जो बातें हैं ये बताई जाती हैं असुरों की ओर से ही बताई जाती हैं। लेकिन वैसे जो है विभीषण का कोई भी दोष नहीं है, रावण ने भी कुछ विभीषण के ऊपर आगे चल करके भी कोई विभीषण की निंदा नहीं की, क्योंकि उसने तो जितनी निंदा करनी थी पहले ही कर दी विभीषण की निंदा, और विभीषण को खुद ही त्याग दिया, है ना, जबकि विभीषण ने पूरा उसको अवसर दिया था कि सुधर जाए, है ना। लेकिन रावण ने खुद ही जो है जब पूरी तरह त्याग दिया तो इसका मतलब ये कि रावण ने मतलब अपनी तरफ से कह दिया कि अब तुम जो है तुम्हारी जो मर्जी है सो करो, तुम्हें जहाँ जाना है सो जाओ, है ना, मुझे तुमसे कोई मतलब, मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। तो इस तरह से रावण ने खुद ही विभीषण को मौका दिया, तो बल्कि इसको तो इस तरह से कहना चाहिए विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण के लिए जो असली जो मतलब बात है वो ये है कि इसका विनाश आ गया, इसलिए उसको जो कोई भी सही बात है वो पसंद नहीं आ रही, है ना। तो इस तरह की जो निंदा है जो करते हैं तो वही लोग करते हैं जो रावण के पक्ष के होते हैं, है ना। रावण के पक्ष के होते हैं तो रावण के पक्ष में, फिर वो ये भी बोलते हैं रावण ने सीता का हरण किया, वो भी सही किया। तो बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं, तो जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं तो राम रावण के पक्ष में वो सब बातें जो है रावण के पक्ष में ही बोलेंगे और राम की निंदा करेंगे, है ना। तो उनके लिए क्या कहा जाए, है ना। लेकिन ये मुहावरा सही नहीं है, घर का भेद या लंका ढावे, ये जो है सही मुहावरा नहीं है, है ना। ठीक है ना, हाँ। हम बताइए सर, हाँ बाद में बताए, हाँ ठीक है। आप पहले
कल हमने बताया था जो में आ गया भी में तो आकाश
भगवान तो प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि रावण कहीं भी जाए वो मारा जाएगा, है ना। एक प्रश्न उठता है, तो कल मैंने इस प्रश्न में अच्छी चर्चा की थी, विस्तृत चर्चा की थी, तो आप चाहते हैं कि वो चर्चा दोबारा करें।
उसमें अभय दिया था, उसमें तो
नहीं अभय दिया था, लेकिन मैंने तो समझाया था उसको,
तो
अच्छा आपने नहीं सुना था क्या जो मैंने,
लेकिन आज जो कह रहे हैं
पहले जो पहले की बात है, राम ने जो कहा था कि चाहे विभीषण हो या रावण अगर मेरे शरण में आया तो मैंने उसको अभय दिया, ठीक है, तो मैंने उसको अभय दिया, तो मैंने चर्चा की थी तो उसमें ही पूरी बात स्पष्ट हो गई थी, है ना। लेकिन वो आपने अभी ध्यान नहीं दिया उस बात पर। मैंने जो समझाया था कि रावण के लिए जब श्री राम ने कहा कि अगर मेरे शरण में आ जाए तो मैं उसको अभय देता हूँ, और उन्होंने कहा भी कि कोई मेरे शरण में आए अभयम सर्वभूते भ्योदाम में तत्मम, सब प्राणियों से मैं उसको अभय देता दे रहा हूँ, है ना। हाँ, लेकिन ये चर्चा बहुत ज़रूरी भी है करना, क्योंकि अगर नहीं करेंगे चर्चा तो बहुत उल्टे निर्णय निकाले जाते हैं और निकाले गए भी हैं ना, और निकाले जाएंगे, बहुत उल्टे निर्णय निकाले जाएंगे। क्या कि राम ने कहा जो मेरी शरण में आए मैं उसको सब प्राणियों से अभय कर दूंगा, है ना। तो इसका तो फिर यही मतलब है कि रावण अगर राम की शरण में आ जाए तो राम फिर रावण का वध नहीं करेंगे, हैं। और क्या क्या विचार है कि रावण का वध नहीं करेंगे और रावण को लंका का राजा बने रहने देंगे, या क्या विचार है आपका इस विषय में, क्या ऐसा है कि अगर रावण शरण में आ जाए, नहीं नहीं है, हैं। देखो हमने बताया था, कल ये बताया था कि अगर मान लीजिए किसी ने किसी आदमी की हत्या की, अपने भाई की हत्या की, अपने पिता की हत्या की मान लीजिए, और फिर वो आत्मसमर्पण कर दे पुलिस को, पुलिस को आत्मसमर्पण कर दे, है ना, तो क्या होता है उसको।